श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते हैं। भारत में इस समय ये विषय चर्चा में है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो पारंपरिक रिश्ते रहे हैं उनमें कुछ बदलाव आया है और भारत के आसपास मौजूद देशों में धीरे धीरे चीन अपनी पैठ बना रहा है, जो कि भारत का प्रतिद्वंद्वी समझा जाता है। वैसे ये भी एक तथ्य है कि जिन पड़ोसी देशों के बारे में भारत की विदेश नीति की चर्चा इस समय हो रही है उनमें अधिकतर देश ऐसे हैं जो चीन के भी पड़ोसी हैं। अलबत्ता अनेक समानताओं के कारण ये देश भारत से काफ़ी करीब समझे जाते रहे हैं, मगर अब परिस्थितियाँ बदली हुई दिखाई देती हैं। चीन ने बड़ी व्यापक और बहुमुखी योजनाओं के साथ आसपास के देशों में अपनी पैठ बनाना तेज कर दिया और धीरे धीरे इसका नतीजा भी नज़र आने लगा। हालांकि भारत ने हमेशा ही पड़ोसी देशों से मधुर रिश्ते के लिए कोशिश की है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क देशों के सभी प्रधानमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। कई राजनयिकों का मानना था कि मोदी ने विदेश नीति में भारत के हितों को केंद्र में रखा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी आमंत्रित किया गया था।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मोदी सरकार की विदेश नीति का विश्लेषण करने वाले टीकाकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर नेहरूवादी नीतियों की आलोचना करती रही है कि इसमें भारत के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के नेतृत्व में दो ध्रुवों में बंटी दुनिया में नेहरू ने भारत के लिए गुटनिरपेक्ष की राह अपनाई थी। गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना की जाती है कि भारत को इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ संबंधों को और गहरा करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ भारत के पारंपरिक दोस्त रूस से भी करीबी संबंध बनाए रखने के प्रयास किए गए, मगर भारत की इस नीति का एक परिणाम ये भी निकला कि कुछ अवसरों पर रूस ने खुलकर पाकिस्तान की ओर अपना झुकाव जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कुछ समय पहले एक टीवी डिबेट में कहा कि विदेश नीति में यदि कोई बदलाव देखने को मिला है तो वो वर्तमान मोदी सरकार में ही देखने को मिला है।
देखिए, मुझे लगता है कि शायद हमारे विपक्षी साथी, एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट सभी लोग इस बात को एडमिट करेंगे कि विदेश नीति कितनी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओथ लेने के साथ ही शुरू करी थी। ओथ लेने के साथ ही सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के पास, जिन पड़ोसी देशों के पास कभी पीछे अगर इतिहास उठा के देखें तो उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता था, भूटान हो, नेपाल हो, इन सभी, श्रीलंका हो, इन सभी देशों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बात रखी थी कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी हमारे साथ होना चाहिए। ये विदेश नीति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम था जो उन्होंने अपनी ओथ लेने के बाद शुरुआत करी थी। लेकिन 70 साल के अंदर अगर विदेश नीति में कहीं परिवर्तन देखने को मिला तो केवल इसी सरकार में।
मगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया। अलबत्ता उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा।
डिमोनेटाइजेशन एंड हेस्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी हैव बैडली हर्ट दीज एंटरप्राइजेस। नथिंग कॉन्क्रीट हैज बीन डन टू ब्रिंग बैक द प्रॉमिस्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलिजिटली हेल्ड अब्रॉड एज ब्लैक मनी। विमेन, Dalits and minorities are increasingly living in an environment of insecurity. The Modi government has slowly but surely undermined the values that any democratic party, democratic polity should fiercely protect. Important national institutions vital for promoting good governance are experiencing unprecedented new strains. Our neighborhood is far less secure than it was in 2014. Our relations with neighbors have deteriorated in the last 4 years.
Thank you. भारत की पूर्व राजनयिक मीरा शंकर सरकार की विदेश नीति का मूल्यांकन इस प्रकार करती हैं।
Well, firstly, I think the outreach of this government in the field of foreign policy has been very extensive. Apparently, ministerial delegations have visited about 185 countries out 192. And then they have been able to forge a stronger strategic partnership with the United States. They have also been able to improve relations with Bangladesh and Sri Lanka. And in ASEAN, where they had all the 10 ASEAN leaders here for the Republic Day, though the, agreement on free trade and economic cooperation, the regional economic cooperation agreement still is being negotiated, and those are quite protracted. I think the misses have been largely with regard to two relationships, Pakistan, where we don't seem to know what to do, I would say China, because the relationship with China has proved very problematic, as we saw in the confrontation leading up to Doklam. Russia has been a bit neglected and needs more attention. It's been a strategic partner.
वरिष्ठ टीकाकार और लेखक ज्योति मल्होत्रा का कहना है कि विदेश नीति में एक समस्या ये भी है कि विदेश मंत्री का कोई रोल नहीं है, वो केवल ट्विटर पर एक्टिव नजर आती हैं। विदेश नीति का सारा फैसला प्रधानमंत्री करते हैं।
The criticism that she is a Twitter handle and that the decisions are still taken by the Prime Minister, key decisions, I think that's valid, that criticism. Although I would also say that in recent months, Sushma Swaraj has come into her own much, much more.
भारत में टीकाकार कह रहे हैं कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान में भारत की स्थिति कमजोर हुई है। ऐसा भारत की दूरदर्शिता में अभाव के कारण हुआ है। शुरू में मोदी ने मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन आगे चलकर चीजें नाकाम रहीं। मालदीव में अब्दुल्ला यामीन की सरकार आने के बाद से भारत की स्थिति वहां काफी कमजोर हुई। मालदीव को भारत ने 2 हेलीकॉप्टर दिए थे, जिन्हें वो वापस ले जाने के लिए कह रहा है। भारतीय कंपनी GMR से मालदीव ने 511 अरब डॉलर की लागत से विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की डील को भी रद्द कर दिया। भारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने अपनी चर्चा जन गण मन की बात में इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना की।
मालदीव की बाजू मरोड़ने के लिए आटा, आलू, प्याज और अंडे, इनकी जो सप्लाई हम करते थे उसको बहुत कम कर दिया, उन एक्सपोर्ट्स को बहुत कम कर दिया, और इससे भारत और मालदीव के जो संबंध थे वो ख़राब हुए। चीन की निगाह शुरू से मालदीव पर रही है कि वो वहाँ पर अड्डा बना पाए, लेकिन हम अभी तक रोकते आए थे। उसके बाद अहमद निहान, मालदीव के एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट नेता हैं, उनको जून 2018 में भारत में नहीं आने दिया गया है। और फिर निहान साहब ने कहा है कि भारत जो है वो बुली कर रहा है, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है इस क्षेत्र में, जिसके जवाब में हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा है अभी तक कि हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था, एक दफ़े हमारे पास जानकारी आई तो हम आप तक पहुंचा देंगे। ये हमारी चुस्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। अब आप आइए नेपाल पर। जब 2014 में मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी तो हमने करीब 50% जो हम असिस्टेंस देते थे, सहायता देते थे नेपाल को, वो हमने कम कर दी। नेपाल को अपना ही हिस्सा माना कि वो तो अपना ही है, और इसी दौरान चीन ने 250 करोड़ रुपया एड बढ़ा दी। हमने तमाम चीज़ों की सप्लाई भी बंद कर दी, चीन ने पेट्रोल वगैरह भेजना शुरू कर दिया। जनकपुर में प्रधान सेवक ने एक बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करी, रैली को संबोधित किया, और उसके बारे में हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने किया क्या कहा, ट्वीट ये किया कि प्रधानमंत्री की रैली को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भारतीय थे वहाँ पर। तो वहाँ के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने ये कहा था कि भारत का ये रवैया जो है हमें पसंद नहीं है। भारतीय कैसे थे वो नेपाली थे। एक कार्टून भी छपा जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत माँ दिखाई गई या माँ दिखाई गई जिसकी साड़ी का रंग बाई चांस बीजेपी के रंग जैसा था कि भगवा और हरा और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे के सर पर पट्टी बंधी हुई है, थोड़ा सा खून है और नेपाल लिखा हुआ है। नेपाली इसी बात को पसंद नहीं करते, नेपाल एक अलग देश है, एक अलग कंट्री है, लेकिन हमारा रवैया ये है कि अपने हैं। श्रीलंका के साथ भी ऐसे हुआ, वहाँ पर चीन ने एक बंदरगाह भी बनाया है, एक हवाई अड्डा भी बनाया है।
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने दो बार श्रीलंका की यात्रा की। जब हम्बन टोटा पोर्ट को श्रीलंका ने चीन को सौंपा तो मोदी सरकार की आलोचना हुई कि वो श्रीलंका में चीन के प्रभाव को रोकने में नाकाम रही। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी रिश्ते खराब हुए। 2015 में भारत की अनौपचारिक नाकेबंदी के कारण नेपाल जरूरी सामानों की कमी से लंबे समय तक जूझता रहा। ये नाकाबंदी नेपाल के लिए संविधान पर मधेसियों की आपत्ति के कारण थी। नेपाल में मधेसियों की जड़ें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी हुई हैं। इस दौरान नेपाल की राजनीति में भारत के खिलाफ एक किस्म का गुस्सा पनपा और चीन से सहानुभूति बढ़ी। भारत ने संविधान में बगैर किसी संशोधन के ही नाकेबंदी खत्म की, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल गए थे। 2018 में खड़ग प्रसाद ओली फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन के साथ कई समझौते किए। इसी तरह अफगानिस्तान में भी तालिबान हार नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंततः तालिबान और पाकिस्तान के समझौते से ही कोई रास्ता निकलेगा। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान का प्रभाव बढ़ेगा तो बदले हालात में वो भारत के बजाय पाकिस्तान को ही प्राथमिकता देंगे। ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन भारत यहाँ भी अमेरिका को समझाने में नाकाम रहा कि वो ईरान से तेल आयात करेगा। ईरान में भारत चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है, लेकिन इसके लिए भारत को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होना है। ये भारत में वरिष्ठ टीकाकारों का कहना है। बांग्लादेश में इसी साल दक्षिणी और उत्तरी बांग्लादेश को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल को चीन बना रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश ने ढाका स्टॉक एक्सचेंज के 25% हिस्से को, शंघाई और शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज को 11 करोड़ 90 लाख डॉलर में बेच दिया, जबकि भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को नहीं दिया। भारत म्यांमार में अपनी पैठ बना रहा था, लेकिन उसके मुकाबले में चीन ने बहुत तेज़ गति से परियोजनाएं शुरू की और इन परियोजनाओं में प्रगति भी हुई, जबकि भारत अपनी परियोजनाओं में तेज़ गति नहीं ला सका। इन तथ्यों को देखते हुए टीकाकारों का कहना है कि भारत की विदेश नीति के सामने एक बड़ी चुनौती है।